इस आंदोलन जब फैला तो एक बहुत बड़ी क्रांति पैदा हुई रूस में है? और देखा गया कि ये लोग जो है कितना आनंद ले रहे हैं, कितने सुखी हैं है? तो इससे जो है रूस की सरकार को डर पैदा हो गया, रूस की सरकार को डर पैदा हो गया। और फिर उन्होंने हरे कृष्ण वालों को तोड़ना शुरू कर दिया और उनको कैद करना शुरू कर दिया। तो फिर काफी लंबी घटनाएं हैं ये सब। लेकिन आगे चल करके फिर क्या हुआ कि विजय हुई, किसकी? परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तनम, हरे कृष्ण की विजय हुई और हरे कृष्ण आंदोलन को मान्यता मिली। तो ये जो है ना रहस्य है। अब श्रीमद् भागवत में भी कुछ बातें इसी प्रकार की हैं। भगवान कपिल देव अपनी माता देवभूति को समझा रहे हैं। श्रीमद् भागवत का तीसरा स्कंध है, 25वां अध्याय है, श्लोक संख्या 26 है। कपिल भगवान कहते हैं, भक्त्यापमान जाते विराग इंद्रियां दृष्ट श्रुतान मन रचनानुचिंतया चित्तस्य तो ग्रहणे योगे योक्तो यतेष्यते रजुभिर योगे मार्गे। इस प्रकार भक्तों की संगति में सतर्कता पूर्वक भक्ति करते हुए मनुष्य को भगवान की लीलाओं के विषय में निरंतर सोचते रहने से इस संसार में इंद्रिय तृप्ति के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। भक्तों के संग में जब भगवान की कथा सुनते रहते हैं तो क्या होता है, संसार की इंद्रिय तृप्ति के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। कृष्ण भक्ति की ये विधि सबसे सरल योग विधि है, सबसे सरल योग विधि है। सबसे सरल क्यों? क्योंकि आप सुख पूर्वक भक्तों की संगति में आप क्या करते हैं, कृष्ण कथा श्रवण करते हैं, चर्चा करते हैं। जब मनुष्य भक्ति मार्ग में स्थित हो जाता है तो ये अपने चित्त को नियंत्रण करने में सक्षम होता है, अपने मन को नियंत्रण करने में सक्षम होता है, मन से कामनाओं को निकाल सकता है, मन को बस में कर सकता है ना? क्योंकि मन तो बहुत चंचल है, मन से अगर कामनाएं निकालनी है तो पहले तो मन को पकड़ना पड़ेगा और मन को पकड़ना बहुत मुश्किल है, मन बहुत तेज भागता है। हाँ, मन को आप पकड़ नहीं सकते, मन बहुत तेज भागता है। एक सेकंड में वो बंबई चला जाता है, कलकत्ता चला जाता है, है कि नहीं? अमेरिका, रूस, यूरोप, एक सेकंड में चला जाता है ना? तो मन को पकड़ना बहुत मुश्किल है, है? और फिर जब मन को आप पकड़े तब तो कामनाएं निकालें, है कि नहीं? तो फिर कैसे, है ना? लेकिन अगर भक्ति मार्ग में स्थित हो जाए तो बड़ी आसानी से मन को वो पकड़ सकता है। तात्पर्य प्रभु लिखते हैं, सभी शास्त्रों में लोगों को पवित्र ढंग से कर्म करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, जिससे ये इंद्रिय तृप्ति का सुख भोग न केवल इसी जीवन में अपितु अगले जीवन में भी कर सकें। उदाहरण के लिए यदि कोई पुण्य कर्म करता है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति बताई जाती है कि स्वर्ग की प्राप्ति होगी, सभी शास्त्रों में बताया गया। यहां तक कि जो कुरान है ना, उसमें भी लिखा हुआ है, कि मतलब जन्नत, जन्नत में कितनी सुख और सुविधाएं हैं, है ना, वो सब बताया गया है। और बाइबल में भी बताया गया है हेवन, है ना, तो हेवन में कितनी सुख और सुविधाएं हैं, जीवन कितना सुखी है, सब प्रकार की सुविधाएं हैं। और सब शास्त्रों में बताया गया है ये कि आप स्वर्ग प्राप्त करेंगे, भोगेंगे। किंतु भक्त, लेकिन भक्त की बात क्या है, भक्त भक्तों की संगति में रहकर भगवान के गुण और लीलाओं के चिंतन और श्रवण को महत्व देता है, महत्व देता है। भक्त जो है भक्तों की संगति में क्या चाहता है, भगवान की लीला का चिंतन करना चाहता है, भगवत कथा। और भगवान की लीला कैसी, एक तो भगवान ने कैसे सृष्टि पैदा की है, एक तो लीला यह है भगवान की कि भगवान ने कैसे सृष्टि उत्पन्न की, दूसरी लीला क्या है, भगवान कैसे इस सृष्टि का पालन करते हैं। हाँ, तो भगवान की दूसरी लीला कैसी है कि भगवान कैसे इस सृष्टि का पालन करते हैं, और तीसरी लीला क्या है, भगवान कैसे सृष्टि का विनाश करते हैं, तीसरी लीला। और चौथी प्रकार की लीला क्या है कि भगवान के वैकुंठ धाम में कैसे कार्य होते हैं। चार प्रकार की भगवान की लीलाएं हैं। तो जो भक्त है इन चार प्रकार की लीलाओं के चिंतन में वो जो है आसक्त रहता है, उसको स्वर्ग में जाने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान के इन लीलाओं का वर्णन करने वाला पूरा का पूरा साहित्य है। अब कौन कौन से साहित्य में भगवान की लीलाएं वर्णन है, पूरा का पूरा साहित्य ऐसा कौन सा है, एक तो भगवद गीता है, दूसरा ब्रह्म संहिता, और तीसरा श्रीमद् भागवत। जो निष्ठावान भक्त भक्तों की संगति करता है उसे भगवान की लीलाओं को सुनने और उनके विषय में सोचने का सुअवसर प्राप्त होता है। कहां, भक्तों की संगति में, जिसका फल यह होता है कि उसे इस संसार में विषय सुखों के प्रति अरुचि होने लगती है। इस संसार में हो या स्वर्ग में हो, विषय सुखों के प्रति उसकी अरुचि हो जाती है। भक्तों की एकमात्र इच्छा रहती है कि उन्हें भगवान की साक्षात संगति प्राप्त हो, उन्हें क्षणिक विषय सुख के लिए कोई आकर्षण नहीं रहता। जो योग युक्त है उनकी ये दशा है। योग युक्त इस संसार या उस संसार के सम्मोह से विचलित नहीं होता, उसे आध्यात्मिक ज्ञान से ही सरोकार रहता है। ये अलौकिक स्थिति सबसे सरल विधि द्वारा अर्थात भक्ति योग द्वारा सरलता से प्राप्त की जा सकती है, कोई कठिनाई नहीं है। सरल व्यक्ति के लिए बिल्कुल सरल, जो व्यक्ति सरल है उसके लिए विधि बहुत सरल है। यहां पर प्रयुक्त रुजुबी शब्द अत्यंत उपयुक्त है, जिसका अर्थ है अत्यंत सरल। योग मार्ग की विभिन्न विधियां हैं किंतु भगवत भक्ति की विधि सबसे सरल है। ये ना केवल सरलतम विधि है अपितु इसका परिणाम भी भव्य है। अतः हर एक को कृष्ण भक्ति की इस विधि को ग्रहण करना चाहिए और जीवन की पूर्णता तक पहुंचना चाहिए। अब 23वां श्लोक है, कपिल भगवान कहते हैं, मदाश्रया कथा मृष्टां श्रणवन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तावां नेतां मन्गतः चेतसाम। भगवान कह रहे हैं, निरंतर मेरे कीर्तन और श्रवण में लगे रहकर साधुगण किसी प्रकार का भौतिक कष्ट नहीं पाते, क्योंकि वे सदैव मेरी लीलाओं तथा कार्यकलापों के विचारों में ही मग्न रहते हैं। तो किसी प्रकार का क्लेश नहीं उनको होता। तात्पर्य प्रभु लिखते हैं, इस संसार में नाना प्रकार के क्लेश हैं, शारीरिक मानसिक अन्य जीवों द्वारा पहुंचाए जाने वाले और प्राकृतिक उत्पातों से मिलने वाले, है ना। तीन प्रकार के क्लेश हैं, आध्यात्मिक क्लेश जो अपने शरीर और मन से प्राप्त होते हैं, और आदि भौतिक क्लेश दूसरे जीवों के द्वारा प्राप्त होते हैं, और आदि दैविक क्लेश जो प्राकृतिक उत्पातों से प्राप्त होते हैं। तो ये तीन प्रकार के क्लेश हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, और श्रीमद् भागवत इन तीनों तापों को दूर करने वाला है। किंतु साधु ऐसे कष्टों से विचलित नहीं होता, क्योंकि उसके मन में सदैव कृष्ण भक्ति भरी रहती है। इसलिए वो भगवान के कार्यकलापों के अतिरिक्त अन्य किसी की चर्चा नहीं करना चाहता। महाराज अम्बरीश भगवान की लीलाओं के वर्णन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलते थे। वचान से वैकुंठ गुणानु वर्णने भागवत 9:4:18 वे अपनी वाणी का सदुपयोग केवल श्री भगवान के गुणगान में करते थे। साधुगण सदैव भगवान या उनके भक्तों के कार्यकलापों के विषय में सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। कृष्ण भक्ति से भरे रहने के कारण उन्हें भौतिक क्लेश भूले रहते हैं। सामान्य बद्ध जीव भगवान के कार्यकलापों को भुला देने के कारण सदैव चिंताओं से पूर्ण रहते हैं। इसके विपरीत चूंकि भक्तगण सदैव भगवान की कथाओं में लगे रहते हैं, अतः वे संसार के कष्टों को भूले रहते हैं। फिर श्लोक संख्या 24 में कपिल भगवान कहते हैं, तहेते साधवः साधी सर्वसंग विवर्जिता संगस्ते सत्वे प्रार्थ्या संगदो सहराहिते। हे माता, हे साध्वी, ये उन महान भक्तों के गुण हैं जो समस्त आसक्ति से मुक्त हैं। तुम्हें ऐसे पवित्र पुरुषों की संगति करनी चाहिए, क्योंकि ये भौतिक आसक्ति के समस्त कुप्रभाव को हरने वाली है। तात्पर्य प्रभु लिखते हैं, यहाँ पर कपिल भगवान अपनी माता देवहूति को उपदेश देते हैं कि यदि वो भौतिक आसक्ति से मुक्त होना चाहती हैं, तो उन्हें साधुओं के प्रति आसक्ति बढ़ानी होगी। भगवत गीता में 15:5 बताया गया है कि भगवत धाम जाने का अधिकारी कौन है। ये 15वें अध्याय का 5वां श्लोक है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, निर्माण मोहा जित संग दोषा। मतलब जो भौतिक संपत्ति के अभिमान से रहित है, भले ही कोई कितना धनवान या प्रतिष्ठित क्यों ना हो, किंतु यदि वो भगवान के धाम को जाना चाहता है तो उसे अपने वैभव का गर्व छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि झूठी प्रतिष्ठा है। जितनी धन संपत्ति है किसी के पास, इसका कोई भी विचार नहीं किया जाता है, उसके केवल कर्म देखे जाते हैं, उसने कैसे कर्म किए, और अपने कर्मों को साथ में लेके जाता है, बाकी कोई विचार नहीं होता किसी की भी भौतिक संपत्ति का। तो मोह है का मतलब झूठी धारणा कि मैं धनी हूं या निर्धन हूं, ये मोह कहलाता है। ये धारणा कि कोई अत्यंत धनवान है या निर्धन है, ये झूठी धारणा है, क्योंकि स्वयं ही शरीर झूठा और नाशमान है। जो शुद्ध जीव इस भौतिक बंधन से मुक्त होना चाहता है, उसे पहले प्रकृति के 3 गुणों के संसर्ग से मुक्त होना चाहिए। इस समय हमारी चेतना 3 गुणों के कारण कलुषित हो चुकी है, इसलिए भगवद गीता में इसी सिद्धांत का कथन हुआ है। कहा गया है, जित संग दोषा, अर्थात मनुष्य को प्रकृति के 3 गुणों की संगति से मुक्त होना चाहिए। श्रीमद् भागवत में भी यहाँ पर इसी की पुष्टि हुई है। शुद्ध भक्त जो अपने को भगवत धाम पहुंचाना चाहता है, वो प्रकृति के 3 गुणों के संसर्ग से भी मुक्त हो जाता है। हमें ऐसे ही भक्तों की संगति ढूंढनी चाहिए। इसी कारण से हमने अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ का शुभारंभ किया है। अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ जो है ना, एक इसलिए है, ऐसे भक्तों की संगति प्राप्त करने के लिए है जो 3 गुणों के संसर्ग से मुक्त है। मानव समाज में विशिष्ट प्रकार की शिक्षा या चेतना उत्पन्न करने के लिए अनेक संगठन है, किंतु एक भी ऐसा संगठन नहीं है जो समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने में सहायक हो यह अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ ही एक ऐसा संगठन है जो भौतिक प्रकृति के गुणों से मुक्त कर सके। यदि कोई ऐसी अवस्था पर पहुंच चुका है जहां वो भौतिक कलमश से मुक्त होना चाहता है, उसे भक्तों की संगति ढूंढनी चाहिए जहां एकमात्र कृष्ण भक्ति का अनुशीलन होता है। इससे मनुष्य समस्त भौतिक संसर्ग से मुक्त हो सकता है। तो यहाँ का वातावरण दिव्य है। कोई व्यक्ति अगर यहाँ आता है तो यहाँ के दिव्य वातावरण से प्रभावित होता है, मतलब भगवान की पूजा है, भगवान की अर्चना है, भगवान का कीर्तन है, भगवान की कथा है ना, और क्या है। ये जो मंदिर का ये जो कक्ष है, इसमें बस शुद्ध कार्यकलाप होते हैं आध्यात्मिक कार्यकलाप, तो कोई व्यक्ति अगर इसका लाभ उठाना चाहता है तो यहाँ के वातावरण में वो रह सकता है। चूंकि भक्त समस्त भौतिक को संगति से मुक्त हो जाता है, अतः संसार के क्लेशों से प्रभावित नहीं कर पाते। यद्यपि वो भौतिक जगत में रहता दिखाई देता है, किंतु संसार के क्लेशों से छू नहीं पाते। ऐसा कैसे संभव है? बिल्ली के विषय में एक सुंदर दृष्टांत है। बिल्ली अपने बच्चों को अपने मुंह में दबाकर ले जाती है, और जब वो चूहों को मारती है तो उन चूहों को भी उसी मुख में रखती है, लेकिन चूहों को उस मुख में मौत दिखाई देती है। तो बिल्ली का मुंह वही है, लेकिन बिल्ली के मुंह में बिल्ली का बच्चा जाता है तो उसको सुरक्षा का अनुभव होता है, और जब चूहा जाता है बिल्ली के मुंह में तो उसको मौत दिखाई देती है, है ना। तो यही भौतिक जगत है, भौतिक संसार तो यही है, लेकिन भक्त को जो है इसमें भगवान की सुरक्षा का अनुभव होता है, और जो भक्त नहीं है उसको मृत्यु, है ना। तो बहुत अच्छा उदाहरण है। इस प्रकार दोनों ही बिल्ली के मुंह में जाते हैं, किंतु उनकी अवस्था भिन्न भिन्न होती है। बिल्ली के बच्चे बिल्ली के मुख में सुख का अनुभव करते हैं, किंतु जब वो चूहों को ले जाती है तो चूहों को मृत्यु का भय दिखाई देता है। इसी प्रकार जो साधु हैं अथवा जो भगवान के दिव्य सेवा में कृष्ण भक्ति में संलग्न रहते हैं, उन्हें भौतिक क्लेशों के कलमश का अनुभव नहीं होता, किंतु जो कृष्ण भक्त नहीं होते उन्हें वास्तव में सांसारिक क्लेशों का अनुभव होता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि भौतिकतावादी पुरुषों का संग त्याग कर कृष्ण भक्ति में लगे हुए व्यक्तियों की संगति खोजें, इससे उसकी आध्यात्मिक उन्नति हो सकेगी, उनके शब्दों और उपदेशों से उसके भाव बंधन कट जाएंगे। तो हमने इतनी चर्चा की, अब आज के श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं। आत्मन्य एवं आत्मना तुष्ट, आत्मनि एवं आत्मना तुष्ट, कि वो जो भक्त है वो भगवान में संतुष्ट रहता है। जैसे छठवें अध्याय में एक श्लोक है, भगवान कहते हैं यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यतेनाधिकम तथा। संतुष्ट होने का मतलब क्या है? किसी चीज को पाकर के आप संतुष्ट हो गए, इसका मतलब क्या हुआ कि उससे बढ़कर के और कोई लाभ आप नहीं जानते। संतुष्ट होने का मतलब क्या है? किसी चीज को पाकर के अगर आप संतुष्ट हो गए, इसका मतलब क्या हुआ कि इससे बढ़कर के और कोई दूसरा लाभ नहीं मानता व्यक्ति, इसलिए वो कहा जाता है कि संतुष्ट है। लेकिन इस भौतिक संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको पाकर के कोई व्यक्ति संतुष्ट हो जाए, मतलब ये सोचे कि भाई इससे बढ़कर के और कोई चीज नहीं है, ऐसा नहीं है। इस भौतिक संसार में व्यक्ति सोचता है कि चलो मैं इस ये चीज पालूं तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब वो पा लेता है तो फिर देखता है कि नहीं नहीं मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो वो चाहिए, मतलब संतुष्ट नहीं होता। इस भौतिक संसार में कोई भी चीज ऐसी नहीं है, लेकिन हाँ लगता है ना, पत्नी, धन, मकान, कार, बैंक बैलेंस, इन चीजों को जब नहीं पाता है तो सोचता है कि मुझे ये मिल जाए तो मैं संतुष्ट हो जाऊं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जब मिल जाती है तो उसको फिर दिखाई देता है बहुत कमियां दिखाई देती हैं। जो भी चीज पाना चाहता है उसको पा लेता है तो उसमें कमियां दिखाई देती हैं, नहीं नहीं मुझे तो वो चाहिए, मुझे तो वो चाहिए, मुझे तो ये चाहिए, संतुष्ट नहीं होता। केवल एक भगवान ही एक ऐसी चीज है जिसको पाने से व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है कि मतलब और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, है ना, संतुष्ट। फिर तो वो यहां तक तैयार हो जाता है कि मुझे चाहे नरक में, मुझे चाहे नरक में जाना पड़े, लेकिन मैं उनके कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन नहीं छोड़ना चाहता, मतलब ये चीज नहीं छोड़ना मुझे। लेकिन क्या ऐसी चीज है इस भौतिक संसार में जिसमें कोई व्यक्ति इतना संतुष्ट हो कि वो नरक में जाने के लिए तैयार रहे, हर प्रकार के कष्ट भोगने के लिए तैयार रहे? नहीं, कोई चीज ऐसी नहीं है। लेकिन इतना संतुष्ट हो जाता है वो कि वो क्या कहता है, दिवि वा भुवि वा ममा सुवासो नरके वा नरकांतके प्रकामम अवधोरित सारदार विंदो चरणों ते मरणे विचिन्तयामि। चाहे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो, चाहे नरक की प्राप्ति हो, चाहे इस पृथ्वी में रहूं, अवधूरत सारदार विंदो चरणों से मरण चिंतयामि, आपके चरणों का मरण काल तक चिंतन करूं, मेरी यही कामना है ना। तो ये संतुष्टि, लेकिन साथ साथ संतुष्ट नहीं भी है। हाँ, तो हम चर्चा कर रहे थे संतुष्ट होता है भगवान में और भगवान में संतुष्ट नहीं भी होता है। अब भगवान में संतुष्ट नहीं भी है, इसका क्या मतलब? जैसे भोजन, भोजन से आप संतुष्ट हो जाते हैं तो आप क्या कहते हैं, अब नहीं चाहिए, है ना। तो ऐसे वो संतुष्ट नहीं होता है भगवान में, आप समझे ना। संतुष्ट होने का मतलब ये भी होता है भाई, भोजन आप खाते खाते आप क्या कहते हो, भाई मैं संतुष्ट हो गया, अब मुझे नहीं चाहिए। तो क्या ऐसा संतुष्ट होता है कि अब वो सोचता है, भाई मैंने तो अब गीता बहुत पढ़ ली, बहुत सुन ली, कृष्ण कथा बहुत सुन ली, अब मुझे नहीं चाहिए, मैं संतुष्ट हूं, अब मुझे नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है, कभी संतुष्ट नहीं होता, कभी तृप्त नहीं होता, है ना, हमेशा अतृप्त रहता है। आत्मनेव आत्मना तुष्ट, संतुष्ट है और संतुष्ट नहीं भी है। तो दोनों बातें समझना चाहिए कि जो भक्त है भगवान को प्राप्त करके वो संतुष्ट होता है। किस दृष्टि से संतुष्ट होता है? कि भगवान के अलावा और कोई दूसरी चीज नहीं चाहिए उसको, लेकिन भगवान को प्राप्त करके संतुष्ट नहीं भी होता वो, है? कि वो चाहे कि बस मैंने तो इतना सेवा कर ली भगवान की, अब जरूरत नहीं कुछ करने की, इतना मैंने भक्तों का संग कर लिया, अब जरूरत नहीं है, है? तो संतुष्ट नहीं भी होता वो, बल्कि और क्या होता है, अतृप्त होता है कि नहीं। तो इसलिए संतुष्ट होता भी है और संतुष्ट नहीं भी होता है, इन दोनों बातों को समझना चाहिए, है ना। अब किसी का कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? हाँ, तो इस श्लोक में जो भगवान कह रहे हैं कि मन की जितनी भी कामना है, मन के अंदर मनोगत जो कामनाएं हैं उनको त्याग देता है, तो इसका क्या अर्थ है? भौतिक कामनाएं मन में जो है, मतलब क्या होता है, एक तो होता है चिंतन है? और फिर अनुभव और फिर इच्छा, उसको अंग्रेजी बोलते हैं थिंकिंग फीलिंग विलिंग। पहले चिंतन करता है, कामनाएं आती हैं, और फिर उनकी अनुभूति होती है कि इसमें ऐसा सुख, इसमें ऐसा सुख, और फिर उसके अंदर इच्छा पैदा होती है कि मैं इसको प्राप्त करना है ना। तो कामनाएं आती हैं, यहां पर ये बताया गया कि जो स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति है उसके भी मन में कामनाएं आती हैं, कामनाएं आती हैं और फिर चली जाती हैं, आप समझे। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति होता है उसके दिमाग में कामनाएं आती हैं तो फिर उसका वो क्या करता है, मनन करता है, मतलब अनुभव करता है, और फिर उसके अंदर इच्छा पैदा होती है ना। गीता में दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा है, ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्ते सुबजायते संगात संजायते कामा, है ना। तो जैसे विषयों का चिंतन करता है, मन में कामनाएं आती हैं, है ना, तो फिर उसमें संग पैदा होता है, उनका संग होता है, और फिर संग से कामना उत्पन्न होती है, है ना। तो पहले वो कामनाओं का चिंतन करता है और फिर जो है उनका संग पैदा होता है, और फिर उसके अंदर फिर वो कामना जागृत होती है, है कि नहीं। तो कामनाएं आती हैं मन में, लेकिन उसका फिर चली भी जाती हैं, वो त्यागता रहता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि मतलब भौतिक कामनाएं आती नहीं है मन में, जो स्थिर बुद्धि वाला जो पुरुष है उसके मन में भी भौतिक कामनाएं आती हैं, भौतिक विचार आते हैं, भोगने के विचार हैं वो आते हैं, लेकिन आते हैं और जाते हैं, मन में ही जो है मतलब आते हैं और चले जाते हैं, वो निकालता रहता है ना, उनका जो है ना वो प्रभाव नहीं पड़ता है कि वो संघ पैदा कर सके, क्योंकि वो घुस जाता है जब है? जो जो चिंतन है अगर वो बना रहता है तो फिर वो उससे संघ पैदा होता है, उस संघ से फिर कामना पैदा होती है ना। तो यहां पर भगवान ही कह रहे हैं कि वो कामना है मन में जो चली जाती है उनको वो निकालता रहता है, लेकिन अगर भरी रहेगी तो फिर जो है उससे क्या होगा, थिंकिंग से फीलिंग और विलिंग है ना, इच्छाएं पैदा होती हैं, तो वो जो है इनसे मुक्त रहता है। अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि वो कामनाओं से मुक्त रहता है, उसके अंदर दिव्य कामनाएं होती हैं है ना, कि कैसे सेवा करें, कृष्ण की कैसे सेवा करें, है कि नहीं। यहां ये मतलब नहीं है आत्मा नहीं आत्मा ना तुष्ट है, कि भाई वो अपने अंदर अपने आप संतुष्ट है तो मतलब वो कुछ करता नहीं है, कुछ कामना होती नहीं है, हा? इसका ये मतलब नहीं है। उसके अंदर कामना होती है क्या, कृष्ण की सेवा करने की, है कि नहीं। ये हरे कृष्ण महामंत्र का जाप भी अपने आप में क्या है, एक प्रार्थना, क्या कि मुझे अपनी सेवा में लगाइए, मुझे अपनी सेवा में लगाइए, है ना। तो ये हमारी कामना है, अगर इच्छा ना हो तो फिर जीवन का मतलब क्या है, इच्छा ही जीवन है। जो मायावादी हैं वो कहते हैं कि भाई हमें इच्छाओं से मुक्त होना है, लेकिन जो वैष्णव सिद्धांत है वो क्या होता है, भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना है। कैसे, जब अपने अंदर आध्यात्मिक इच्छाएं आप जगा लेते हैं तब आप भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो सकते हैं, है ना। तो भक्ति के अंदर जो है इच्छाएं होती हैं, लेकिन उसको जो है निष्काम कहा जाता है इस दृष्टि से कि उसके अंदर अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं नहीं होती हैं, लेकिन वो उसके अंदर इच्छाएं होती हैं किस प्रकार की, भगवान की सेवा की, भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाए, है ना। ठीक है, कोई प्रश्न और, उनका प्रश्न है कि भगवान को प्रसन्न करने की जो इच्छा होती है वो क्या इंद्रिय तृप्ति नहीं है, ये जो है इसको कहते हैं प्रेम, है? कृष्णेन्द्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम, आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछा धरे काम नाम। काम और प्रेम में यही अंतर है, है? काम मतलब है अपनी इंद्रियों की तृप्ति, अपनी इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छा है इसे काम कहते हैं, और कृष्णेन्द्रिय प्रीति वांछा, कृष्ण की इंद्रियों की तृप्ति की जाए ये जो इच्छा है ये क्या है, प्रेम है, है ना। तो काम को प्रेम में बदलना होता है, ठीक है ना। ये जो प्रेम है वो हमारे हृदय में है पहले से ही, है ना। प्रेम में रजोगुण का संपर्क होने से काम बन जाता है, है ना। रजोगुण समुद्भवा, काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भवा, रजोगुण से उत्पन्न होता है। रजोगुण का जब मिश्रण होता है प्रेम में तो वो काम बन जाता है, है ना। अब भक्तियों की विधि के द्वारा हम इस काम को फिर से प्रेम में बदलते हैं, है ना। तो ये कठिन है लेकिन इसको करना पड़ता है, संभव है, है ना। और कोई प्रश्न, अच्छा तो भगवान जो कह रहे हैं कि अपने अंदर वो अपने द्वारा ही संतुष्ट रहता है, इसका मतलब क्या हुआ, कौन बताएगा। वो अपने को परमेश्वर का शाश्वत दास मानता है, इसमें संतुष्ट रहता है, है ना। जिसे कल हमने चर्चा की थी कि प्रभुपाद अपने को भगवान का कुत्ता कहते थे, है कि नहीं। किसी ने पूछा प्रभुपाद से कि आप भारत से यहां पर क्यों आए हैं, है? तो प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया कि जब कोई चोर किसी मकान में चोरी करता है तो मकान के अंदर रहने वाला कुत्ता तुरंत आता है भौंकने के लिए, है? तो तुम कृष्ण की संपत्ति को चुरा रहे हो, तो मैं आया हूं तुमको भौंकने के लिए, प्रभुपाद ने, है ना। तो प्रभुपाद ने कहा कि मैं भारत से यहाँ क्यों आया हूँ, ये तुम लोग कृष्ण की संपत्ति को चुरा रहे हो, तो मैं भोंकने के लिए आया हूँ। देखो है ना, तो भगवान का कुत्ता बनना, आप जानते हो ब्रह्मा और शंकर को जो भी सुविधाएं प्राप्त होती हैं, ब्रह्मा और शंकर के पद से बहुत ऊंचा जो है ना सुख है और सुविधा है कृष्ण का कुत्ता बनने में। इस भौतिक संसार में ब्रह्मा और शंकर का पद बहुत ऊंचा होता है कि नहीं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में एक कुत्ता अगर बन जाए तो वो यहाँ के ब्रह्मा और शंकर की पोस्ट से बहुत बहुत ऊंचा है। उसी प्रकार से जैसे किसी बड़ी कंपनी में कोई व्यक्ति अगर झाड़ू लगाता है, स्वीपर बन जाए, झाड़ू लगाने वाला, तो उसकी तनख्वाहें बहुत होती है छोटी कंपनी के मैनेजर से। छोटी कंपनी में मैनेजर को मान लो 5,000 रुपए मिलता है ना, और बड़ी कंपनी में वो झाड़ू लगाता है तो उसको 10,000 रुपए मिलता है झाड़ू लगाने का ही, है कि नहीं। तो बड़ी कंपनी में अगर हमें कुछ थोड़ा सा भी अगर कुछ मिल जाए स्थान कहीं भी किसी प्रकार से, तो हमें कोशिश करना चाहिए। तो अगर कृष्ण का कुत्ता अगर किसी प्रकार से बनने का अगर सौभाग्य मिल गया तो बहुत बहुत बड़ा समझो कि हमारा सौभाग्य है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद्गीता के जगत